स्वागत है आपका दिन भर में। आज है 1 अगस्त, दिन सोमवार और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने दिया इस्तीफा।
पार्टी हाईकमान ने आनंदीबेन को इस्तीफा देने का कहा या आनंदीबेन ने खुद ने इच्छा जताई है, लेकिन आनंदीबेन का जाना ये तय था।
संसद में आज अभिनेता आमिर खान को लेकर रक्षा मंत्री पर्रिकर के बयान पर हंगामा, प्रधानमंत्री से स्पष्टीकरण की मांग। भारतीय पहलवान नरसिंह यादव को डोपिंग मामले में मिली क्लीन चिट, अब रियो ओलंपिक में दिखा सकेंगे दमखम। सुनी गए खास रिपोर्ट, देह व्यापार के कुचक्र से निकलकर कारोबार में हाथ आजमाती महिलाओं पर।
क्योंकि मैं गंदी हो गई ऐसा सोच रहे था वो लोग मेरे घर पे नहीं।
लेकिन पहले बीबीसी समाचार।
बीबीसी समाचार, तृप्ति श्रीवास्तव से। गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने गुजरात बीजेपी प्रमुख को अपना इस्तीफा भेज दिया है। इससे पहले उन्होंने फेसबुक पर अपने इस्तीफे की पेशकश की थी। फेसबुक पर लिखे एक लंबे पोस्ट में आनंदीबेन ने पार्टी से उनके 75वें जन्मदिन से पहले छुट्टी देने को कहा था। आनंदीबेन के मुख्यमंत्री रहते गुजरात में पाटीदार आंदोलन और दलित आंदोलन ने सिर उठाया। गुजरात में चल रहे आंदोलनों को लेकर राज्य पर सरकार का पूरा नियंत्रण न होने की बात भी कही जा रही थी। डोपिंग विवाद में फंसे भारतीय पहलवान नरसिंह यादव रियो ओलंपिक जाएंगे। सोमवार को फैसला सुनाते हुए नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा ने नरसिंह यादव को डोपिंग मामले में क्लीन चिट दे दी। मीडिया के सामने नाडा के अधिकारियों ने माना कि इस मामले में नरसिंह साजिश का शिकार हुए। रूस ने कहा है कि उनके सैन्य हेलीकॉप्टर में से एक को सीरिया ने मार गिराया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हेलीकॉप्टर में 2 अधिकारी और क्रू के 3 सदस्यों समेत 5 लोग सवार थे। यह हेलीकॉप्टर इदलीब प्रांत में गिरा। उन्होंने बताया कि सैन्य परिवहन हेलीकॉप्टर पर एलेप्पो में मानवीय सहायता देने के बाद हमला किया गया। इससे पहले एलेप्पो में विद्रोहियों ने सैन्य हेलीकॉप्टर को मार गिराने का दावा किया था। एलेप्पो के निवासी जोहिर अल शिमाली ने बताया,
many agencies here said that the helicopter was holding and
कई एजेंसियों ने कहा कि हेलीकॉप्टर दवाइयां और खाना लेकर जा रहा था, लेकिन वो पूर्वी एलेप्पो में विद्रोहियों के इलाके में नागरिकों में वो सामग्री नहीं बांट रहा था जिन्हें 2 हफ्ते से ज्यादा वक्त से बंधक बनाकर रखा गया है। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। ब्राजील ओलंपिक खेलों के शुरू होने से महज 4 दिन पहले एसोसिएट प्रेस न्यूज एजेंसी ने अपनी रिसर्च में रियो डी जेनेरो के जलमार्ग से जुड़े जो तथ्य सामने रखे हैं उसके अनुसार यहां के जलमार्ग मानवमल, बैक्टीरिया और खतरनाक वायरस से दूषित हैं। 16 महीने से चल रहे इस सर्वेक्षण में रियो के पानी वाले स्थान वायरस के खतरे के स्तर से काफी ऊपर पाए गए हैं, लेकिन रियो ओलंपिक के अधिकारी लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि रियो का पानी खिलाड़ियों और आने वाले लोगों के लिए सुरक्षित है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहरी हिस्से में स्थित नॉर्थ गेट कंपाउंड के गेट पर सोमवार तड़के एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस परिसर में विदेशी कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं। शहर के पुलिस प्रमुख अब्दुल रहमान रहीमी ने बीबीसी को बताया, हमले में एक पुलिस अधिकारी की मौत हुई है और 3 अन्य घायल हुए हैं। सुरक्षा बलों की कुछ घंटे की कार्रवाई में दोनों हमलावर भी मारे गए। इस हमले की जिम्मेदारी तालिबान ने एक बयान जारी कर ली। अमेरिकन ऑनलाइन टैक्सी सेवा उबर ने चीन के स्थानीय प्रतिद्वंदी दीदी चूशिंग के साथ विलय करने का सौदा किया है। 2 साल पहले चीन के बाजार में उतरी उबर को बड़ा हिस्सा कमाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही थी और उबर मुनाफा नहीं कमा पा रही थी। बीबीसी समाचार।
आप सुन रहे हैं दिनभर रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर लाइव, और मैं हूं अमरेश द्विवेदी। जैसा आपने अभी समाचारों में सुना, गुजरात में जारी दलित आंदोलन के बीच राज्य की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने अपना इस्तीफा दे दिया है। दिलचस्प बात यह है कि आनंदीबेन ने पार्टी अध्यक्ष को इस्तीफा भेजने से पहले फेसबुक पर एक पोस्ट लिखकर अपने इस्तीफे की पेशकश की। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा है कि इस्तीफे पर अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा। एक रिपोर्ट के साथ अहमदाबाद से अंकुर जैन।
आज गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन पटेल ने फेसबुक के जरिए बीजेपी से उनको जिम्मेदारियों से मुक्त करने को कहा। अपनी फेसबुक पोस्ट में आनंदीबेन पटेल ने बीजेपी नेतृत्व से कहा कि वह नवंबर में 75 साल की हो जाएगी और इसीलिए उन्हें 2 महीने पहले ही उनकी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया जाए। आनंदीबेन ने कहा कि क्योंकि गुजरात में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जनवरी माह में ही वाइब्रेंट गुजरात का कार्यक्रम आयोजन होना है, इसलिए उन्हें समय रहते मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए ताकि नए सीएम को काम करने का मौका मिले। उसके बाद आनंदीबेन पटेल ने पत्रकारों से कहा,
पिछले कुछ समय से पार्टी में 75 वर्ष की आयु के बाद वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने अपनी स्वैच्छिक निवृत्ति से मुक्त होना स्वीकार करके एक अभूतपूर्व परंपरा आरंभ की है। ये सबके लिए उदाहरणीय और अनुकरणीय है। इसकी वजह से आने वाली पीढ़ी को कार्य करने का अवसर मिलेगा। मेरे भी नवम्बर में 75 साल पूरे हो रहे। नवनियुक्त मुख्यमंत्री को पूर्ण समय मिले, मैं इस फिर से इस पत्र के माध्यम से पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व को मुझे मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी से मुक्त करने की विनती करती हूँ।
इससे पहले 75 साल के आघोषित नियम के चलते ही पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री नजमा हेपतुल्ला को इस्तीफा देना पड़ा था। आनंदीबेन मई 2014 में मुख्यमंत्री बनी थी। उनका जन्म 1941 में हुआ था और इस साल 31 नवंबर को वह 75 साल की हो जाएगी। वहीं बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि उन्हें आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा मिल गया है और अब वे पार्टी की संसदीय बोर्ड के सामने इस पत्र को रखेंगे।
नवंबर में उनके 75 साल समाप्त हो गए और क्योंकि जो नया व्यक्ति पार्टी लाना चाहती है उसको एक समय मिलना चाहिए, तो ये उन्होंने जो पत्र मुझे लिखा है मैं पार्लियामेंट्री बोर्ड के सामने रखूंगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड उस पर निर्णय करेगा।
पिछले दिनों ऊना में दलितों की बेरहमी से पिटाई को लेकर आनंदीबेन पटेल सरकार की काफी किक्करी हुई थी। दलितों ने रविवार को अहमदाबाद में विशाल रैली कर अपना आक्रोश जताया था और राज्य सरकार को चेतावनी भी दी थी कि वो ऊना कांड के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान दलित युवाओं पर दर्ज मामले वापस ले, वरना दलित अपना आंदोलन और तेज करेंगे। पिछले साल पाटीदार आंदोलन को सही तरीके से संभाल ना पाने के कारण भी आनंदीबेन पटेल को आलोचना का शिकार होना पड़ा था। उसके अलावा आनंदीबेन पटेल सरकार पे पिछले 2 साल में भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। आनंदीबेन पटेल के इस्तीफे के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर गुजरात में भाजपा के कमजोर होने की बात कही। गुजरात कांग्रेस के प्रवक्ता मनीष जोशी ने कहा,
जिस तरीके से भाजपा सरकार में भ्रष्टाचार की जगह पे भ्रष्टाचार में भाजपा सरकार लिप्त हो गई थी, गुजरात में सभी आतंक माध्यम से जीवन जी रहे थे, सभी लोगों को अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे थे, सरकार की जन विरोधी नीतियां खुली पड़ गई थी, इसलिए गुजरात में भाजपा को पता चल गया था कि सरकार के चुनाव में सत्ता की जो इसकी कुर्सी थी वो चली जाने वाली है, इसलिए भाजपा ने ये निर्णय किया है। ये भाजपा का वैसे इसको मुख्यमंत्री रखना नहीं रखना इसका आंतरिक मामला है।
पर गुजरात में इस बात पर चर्चा है कि आंदोलनों के दौरान इंटरनेट बैन करने के लिए मशहूर आनंदीबेन ने अपनी मन की बात इस तरह फेसबुक पर क्यों लिखी। क्या बीजेपी और नरेंद्र मोदी आनंदीबेन का इस्तीफा मंजूर करेंगे और कौन बनेगा गुजरात का अगला सीएम, ये तो वक्त ही बताएगा। अंकुर जैन, बीबीसी अहमदाबाद।
सवाल उठता है कि आनंदीबेन ने इस वक्त इस्तीफा क्यों दिया जब बीजेपी दलित आंदोलन को लेकर संकट का सामना कर रही है। यही समझने के लिए मैंने बात की अहमदाबाद में वरिष्ठ पत्रकार प्रशांत दयाल से।
आनंदीबेन को हटाया जाए या आनंदीबेन जा रही है ऐसी अफवाह है पिछले 1.5 साल से गुजरात में चल रही है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने और उसके बाद मुख्यमंत्री का पद आनंदीबेन को सौंपा गया, तब से पार्टी में काफी नाराजगी थी। नाराजगी उसको लेके थी कि आनंदीबेन से काफी सीनियर लोग पार्टी में होने के बावजूद आनंदीबेन को मुख्यमंत्री का पद सौंपा गया। उसके बाद आनंदीबेन की बेटी को लेकर करप्शन के सवाल हुए, उसके बाद पटेल आंदोलन 1.5 साल चला, उसमें भी ये आरोप लगाया गया कि आनंदीबेन ने पूरी घटना को बहुत ही मिसहैंडल किया है और अभी फिलहाल दलित आंदोलन भी शुरू हुआ है। इसको चलते पार्टी के कई नेता ये मानते थे कि आनंदीबेन को हटा के कोई सक्षम नेतृत्व किसी को दिया जाए, उसको लेके ये चर्चा हो रही थी। अब अभी तक ये क्लैरिटी नहीं आई कि पार्टी हाईकमान ने आनंदीबेन को इस्तीफा देने का कहा या आनंदीबेन ने खुद ने इच्छा जताई है, लेकिन आनंदीबेन का जाना ये तय था।
पार्टी ने आनंदीबेन का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में किस नेता को मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाया जा सकता है?
पिछले 6 महीनों से गुजरात में जो घटनाएं घटी है वो इतनी पार्टी के लिए भी शर्मसार है कि आनंदीबेन पे भी आनंदीबेन के परिवार पे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा और जो फर्स्ट रैंक के लीडर है उनपे भी भ्रष्टाचार का आरोप लगा। इस स्थिति में आज एक भी पुराना चेहरा ऐसा नहीं है जिसे मुख्यमंत्री के पद के लिए पार्टी उसका चेहरा का इस्तेमाल कर सके। अब स्थिति ये है कोई नया साफ सुथरा चेहरा ही पार्टी को ढूंढना होगा मुख्यमंत्री के लिए।
ऐसे में कौन ऐसा नेता है जिस पर पार्टी भरोसा जता सकती है और 2017 के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए चेहरा बना सकती है?
मैं पिछले 20-25 साल से नरेंद्र मोदी की कार्यप्रणाली को देखता हूँ और नरेंद्र मोदी को जानता हूँ। वो हर बार ऐसा ही कुछ करते हैं जो लोगों की पत्रकारों की या पार्टी की अपेक्षा से दूर हो, तो हम जो भी नाम सोचेंगे वैसा कोई भी नाम हम अनुमान लगाएंगे ऐसा कोई भी नाम नहीं आएगा, कोई एक अननोन चेहरा लोगों के सामने रख दिया जाएगा।
गुजरात में अभी दलित आंदोलन चल रहा है, इससे पहले पाटीदार मूवमेंट चल रहा था, क्या पार्टी ऐसी संकट के हालात में, पार्टी एक तरह से कहा जा सकता है कि क्राइसिस से गुजर रही है, ऐसे में इस क्राइसिस से बाहर निकलने के लिए, संकट से बाहर निकलने के लिए पार्टी क्या किसी दलित चेहरे को सामने ला सकती है, और क्या नेता के चुनाव में आरएसएस की कोई भूमिका होगी?
पहले मैं बता दूं कि पिछले 15 साल से गुजरात के निर्णयों में आरएसएस का निर्णय बहुत कम रहा है या मायने बहुत कम रखता है। लेकिन आपका जो दूसरा सवाल है कि दलित मुख्यमंत्री हो सकता है, तो मैं ये मानता हूं कि दलितों को लेके पूरे देश में और विश्व में जो एक छवि खराब हुई है उसके चलते और गुजरात में जो दलित आंदोलन चल रहा है उसके चलते ये संभावना भी देखी जा रही है कि कोई दलित विधायक को या दलित नेता को मुख्यमंत्री का पद सौंपा जाए। हालांकि पार्टी की परेशानी ये भी है कि अभी कोई स्टेट लेवल का दलित चेहरा उनके पास नहीं है।
ये थे प्रशांत दयाल। आपको आपसे हम माफ़ी मांगना चाहते हैं कि जब हमने ये इंटरव्यू किया था उस समय खबर आ रही थी कि पार्टी ने इस्तीफा स्वीकार कर लिया है, लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, इसके बारे में अंतिम फैसला संसदीय बोर्ड की बैठक में होगा।
दिन भर शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़ और मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर।
भारतीय संसद के उच्च सदन राज्यसभा में आज रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर के अभिनेता आमिर खान पर दिए बयान पर जमकर हंगामा हुआ। विरोध कर रहे नेता मांग कर रहे थे कि प्रधानमंत्री संसद को बताएं कि पर्रिकर ने ऐसा बयान खुद दिया है या पार्टी की तरफ से उन्हें ऐसा करने को कहने को कहा गया है। उधर सऊदी अरब में फंसे भारतीयों को मदद पहुंचाने के बारे में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने कहा कि लोगों के खाने पीने की पूरी व्यवस्था की जा रही है और उनकी स्वदेश वापसी के लिए भी पहल की जा रही है। एक रिपोर्ट के साथ सलमान रावी।
एक पुस्तक के विमोचन के दौरान अभिनेता आमिर खान पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर द्वारा दिए गए बयान पर सोमवार को राज्यसभा में खासा हंगामा हुआ। ये मामला शून्यकाल में तृणमूल कांग्रेस के सांसद डेरेक ओब्रेन ने उठाया।
थर्ड टाइम इफ इट हैपेंस वी कैन कॉल इट अ ब्लंडर बट इफ इट हैपेंस एंड हैपेंस एंड हैपेंस आई हैव टू से सर इट इज अ डिसीजन।
डेरेक ओब्रेन कह रहे थे कि पिछले 2 सालों से देश में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बढ़ी हैं। उनका आरोप था कि एक दो बार की हिंसा तो गलती भी हो सकती है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ऐसा किसी फैसले के तहत हो रहा है। टीवी चैनलों और अखबारों में छपी खबरों के मुताबिक पर्रिकर ने पुणे में 30 जुलाई को आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि देश के खिलाफ बोलने वाले किसी भी शख्स को सबक सिखाया जाना चाहिए, जैसे कि एक अभिनेता और एक ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनी को सिखाया गया था। माना जा रहा है कि इस बयान में अभिनेता आमिर खान पर निशाना साधा गया था। हंगामे के बीच राज्यसभा में कांग्रेस के नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि इस देश में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए।
यू नो टोल्ड व्हाट टाइप ऑफ एक्शन एंड लेसन ही इज गोइंग टू टीच द माइनॉरिटीज ऑफ दिस कंट्री।
सदस्यों के शोर शराबे के बीच मनोहर पर्रिकर ने अपनी सफाई देते हुए मीडिया की खबरों को गलत बताया।
ओनली से वन थिंग, लेट द members see the video for themselves and they won't go by the newspaper report. Let them see the video themselves and make up their mind.
So see the video.
मगर बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती का कहना था कि इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बयान देना चाहिए।
जब से केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को इन्होंने अपना निशाना बनाया, उनका हर प्रकार से अपमान किया गया और अब पूरे देश के अंदर दलितों के साथ भी बड़े पैमाने पर उत्पीड़न हो रहा है। हमारी पार्टी ये चाहती है कि प्रधानमंत्री हाउस के अंदर आए और ये बताएं।
वहीं सदन में सऊदी अरब में फंसे हुए भारतीय नागरिकों की दशा पर भी चर्चा की गई। सदस्यों ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज से मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की। कांग्रेस के सदस्य राजीव शुक्ला का कहना था,
हर एम्बेसी में हमें जो है लीगल असिस्टेंस की सुविधा करानी चाहिए और लोगों को मदद करने के लिए वहां पे एक सेल बनानी चाहिए स्पेशल।
विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सदन को बताया कि फिलहाल सऊदी अरब में भारतीय मजदूरों के साथ राहत शिविर है, जहाँ पर अगले एक सप्ताह के लिए भोजन की व्यवस्था कर दी गई है।
इसकी मॉनिटरिंग कर रही हूँ, निगरानी कर रही हूँ, हर घंटे में मुझे रिपोर्ट चाहिए। आज मुझे संतोष है इस बात का, इस सदन को ये बताते हुए कि रात के 2:45 बजे मुझे आखिरी मैसेज आया कि पांचों के पांचों कैंपों में भोजन वितरित कर दिया गया है और सब लोगों को अगले 7 से 10 दिन का राशन।
विदेश मंत्री का ये भी कहना था कि कई मजदूरों का अपने मालिकों पर बकाया भी है और उनका मंत्रालय सऊदी अरब की सरकार से अनुरोध कर रहा है कि वो सुनिश्चित करे कि सबके बकाए पैसे वापस मिल जाए।
हमने सऊदी अरब के फॉरेन ऑफिस से भी संपर्क कर लिया, लेबर ऑफिस से भी संपर्क कर लिया। सऊदी अरब में ये नियम है कि इमरजेंसी अपनी एम्बेसीज इमरजेंसी एग्जिट वीजा भी नहीं दे सकती जब तक कि उनके एम्प्लॉयर उनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं देते। तो हमने फॉरेन ऑफिस से कहा कि जब एम्प्लॉयर है ही नहीं तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहाँ से मिलेगा, इसलिए आप हमारी एम्बेसीज को ये ऑथोराइज करिए कि वो एग्जिट वीजा देके इनको निकालने की परमिशन दे। और लेबर ऑफिस से हमने कहा कि 8-8 महीने का बकाया नहीं, कईयों का तो बहुत बहुत दिनों का।
बहरहाल विदेश राज्य मंत्री जनरल वी के सिंह कल सऊदी अरब जा रहे हैं, जहां वो वहां की सरकार से भारतीय मजदूर के वापस देश लौटने की संभावनाएं तलाशेंगे। सलमान रावी, BBC दिल्ली।
और अब आज की खास रिपोर्ट। कभी नौकरी के झूठे वायदे में फंसकर तो कभी अपने ही पति के झांसे का शिकार होकर हर साल लाखों औरतें देह व्यापार में धकेली जाती हैं। एक बार इस कुचक्र में फंस जाने के बाद वो वहां से बाहर निकल भी आएं तो वापस अपने गांव या कस्बे में इज्जत से गुजर बसर कर पाना एक बड़ी चुनौती होती है। कोलकाता में एक समाजसेवी संस्था ऐसी औरतों को अपना बिजनेस लगाने के लिए निवेश के पैसे दे रही है। कितनी बदल पाई है इससे उनकी जिंदगी, यही जानने कोलकाता पहुंची BBC संवाददाता दिव्या आर्य।
2 दिन के बाद आपको चालू हो जाएगा, 2 दिन के बाद अब ये सिम कार्ड फोन में लगा के 59059 में कॉल करेगा।
बेहद आत्मविश्वास से लोगों को सिम कार्ड बेचने और फोन कनेक्शन दिलवाने वाली प्रियंका कुछ साल पहले अपनी जान लेने की सोच रही थी। देह व्यापार से किसी तरह निकलकर गांव वापस लौटी थी, पर वहाँ सिर्फ बदनामी मिली।
मेरे और गाँव के से मेरे से बात नहीं करता था, मेरे से क्योंकि मैं गंदी हो गई ऐसा सोच रहे था वो लोग। मेरे घर पे नहीं आता था, उसके कुछ भी पूछता हो नहीं था, तो मैं बोल रहता था मैं सोचता हूँ मैं मर जाऊँ, मेरे को जीने का कोई ये नहीं था।
प्रियंका 16 साल की थी जब पैसे कमाने का झांसा देकर नशे की गोली खिला उन्हें बंगाल के एक गांव से पुणे ले गए।
हाँ, मेरे को मार रहे, अभी भी दाग है मेरे पाँव में, ओल मैंने लकड़ी है ना उसके साथ वो प्रे बहुत घुसी मारा था, बहुत जोर था, पोर दिल में ठुक रहा था, लेकिन मैं अभी ये काम नहीं कर रहा है, नहीं करेगा नहीं करेगा, तो लोग बहुत मारा था, बहुत 6 महीना का बाद मेरे को काम करना पड़ा।
एक गार्ड के साथ मिलकर किसी तरह भाग तो आई, पर लोगों ने उनके घर तक आना छोड़ दिया। ना खाने को दाना था, ना किसी की आंखों में उसके लिए इज्जत। दरअसल खुद कोठे से भागी लड़कियों के रोजगार या पुनर्वास के लिए सरकार की कोई नीति नहीं है। हाँ, अगर पुलिस रेड में किसी औरत को छुड़ाया जाए तो उसे रेस्क्यू होम में रखकर कुछ हुनर सिखाए जाते हैं। बंगाल के एक सुदूर गांव की रहने वाली आसमा पुणे के ऐसे ही एक रेस्क्यू होम में 2 महीना रही।
मैं वहाँ बहुत परेशान थी, मुझे ब्यूटिशियन का काम सिखाया पर मुझे उस इलाके की भाषा ही नहीं आती थी तो मैं कुछ सीख नहीं पाई। फिर हमारे गांव में ऐसे काम की कोई मांग भी नहीं है और गांव वापस लौटकर मुझे इतना डर लगता था कि कहीं नौकरी करने के बारे में सोच भी नहीं पाती थी।
ऐसी औरतों के केस लड़ चुके वकील कौशिक गुप्ता कहते हैं,
इसका कोई सर्वे नहीं है, कोई असेसमेंट नहीं है कि जब वो अपने गाँव वापस जाएगी वो काम जो उन्होंने वहाँ पे सीखा उसका कोई प्रयोग वहाँ पे हो सकता है या नहीं। सो ये हिसाब से रिहैबिलिटेशन काम नहीं कर रहा है एग्जिस्टिंग लॉ के तहत, इसीलिए जो लड़की है वो दोबारा ट्रैफिक हो रही है।
आसमा हिम्मती थी, उसे देह व्यापार में उसके पति नहीं धकेला था और वो उसके खिलाफ केस दायर करना चाहती थी, पर गुजर बसर की जरूरत हो या न्याय की जिद, पैसों के बिना समाज में इज्जत का मकाम दूर था। आसमा और प्रियंका जैसी औरतों के साथ काम कर रही संस्था संजोग ये परेशानी खूब समझती है। संस्था शुरू करने वाली उमा चैटर्जी बताती हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जरिए ग्रामीण औरतों के छोटे मोटे बिजनेस लगाने की सरकारी योजना भी इन औरतों के लिए काम नहीं करती।
सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मैरिड वुमेन के लिए हैं और इनको स्टेबल रखने के लिए महिलाएं शादीशुदा हों, नॉर्मल मेनस्ट्रीम सोसाइटी की हों, इस समाज मेनस्ट्रीम समाज की हों, ये बहुत ज़रूरी है। और ट्रैफिक्ड विक्टिम इस समाज की इस मेनस्ट्रीम इसमें देखी नहीं जाती है। तो कोई भी सेल्फ हेल्प ग्रुप अपनी स्टेबिलिटी के लिए, अपनी संतुलन के लिए अनमैरिड ट्रैफिक विक्टिम को तो हम लेंगे नहीं, क्योंकि इससे हमारी ग्रुप की एक तो रेपुटेशन जो है वो ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो तो कलंक लेके आई है, और दूसरा वो मैरिड नहीं है, कल अगर शादी हो गई मेरा ग्रुप तो ऐसे ही ख़राब हो जाएगा, उसे बाहर रहने दो।
उमा की संस्था ने एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी संगठन से फंडिंग लेकर कुछ औरतों को दुकान लगाने में मदद की। आसमा इसी दुकान से होने वाली कमाई के जरिए पति के खिलाफ मानव तस्करी का मुकदमा दायर कर पाईं। दुकान चलाने के बाद प्रियंका की जिंदगी भी बदली, प्यार हुआ और शादी भी।
अभी तो मेरी लड़की 1.5 साल का है, मैं चाहती हूँ कि उसको बहुत स्ट्रांग बना। मेरी हस्बैंड का यही सोच है कि उसको अच्छा से पढ़ना लिखना कराओ, उसको एक काम पे ठीक से पामे खड़ा करो।
सरकार अब मानव तस्करी की रोकथाम के लिए एक नया कानून तैयार कर रही है, पर आलोचकों के मुताबिक अब भी सरकार ये नहीं समझ पाई है कि मर्द, औरत या ट्रांसजेंडर जो भी तस्करी से बचकर निकला है वो किसी भी आम इंसान की तरह अपने बारे में सोचने और फैसला करने का अधिकार रखता है। तो पुनर्वास की नीति ऐसी होनी चाहिए जो एक व्यक्ति के हालात के मुताबिक ढाली जा सके, ताकि उसे सचमुच एक नई जिंदगी बनाने में मदद मिले। दिव्या आर, BBC, कोलकाता।
रिपोर्ट के बारे में लिखिएगा अपनी राय। और अब आपकी चिट्ठियों की बारी।
आपकी राय। नमस्कार स्वीकार कीजिए राजेश जोशी का, और मेरे साथ हैं
वंदना
जी। वंदना का भी नमस्कार स्वीकार कीजिए, जिनके पास बहुत सारी चिट्ठियां हैं और पोस्ट कार्ड और अंतर्देशीय लिफाफे हम आज ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि कुछ श्रोताओं की शिकायत आई है। क्या शिकायत आई है, जरा शुरू कीजिए
जी। शिकायत जो है वो हमारे पुराने श्रोता हैं प्रमोद कुमार श्रीवास्तव, जो अमेठी से लिखते हैं अक्सर। उनका ये कहना है कि आपकी राय में जिस अनुपात में ईमेल पत्र शामिल किए जाते हैं, उसी अनुपात में श्रोताओं द्वारा डाक से भेजे गए पत्रों को शामिल किया करें।
हाँ, आगे कह रहे हैं कि अमीर लोग ईमेल लिखते हैं और गरीब लोग चिट्ठियां लिखते हैं, इसलिए गरीबों की चिट्ठियां शामिल नहीं होती। लेकिन प्रमोद भाई, ये तो सच नहीं है। हम चिट्ठियाँ, पोस्ट कार्ड, अंतर्देशीय लिफाफे, जो भी हमारी पास प्रतिक्रिया आती है, सबको शामिल करते हैं। पिछली बार पोस्ट ऑफिस से नहीं आई थी चिट्ठियाँ, इसलिए हमने ईमेल शामिल किए थे। लेकिन ईमेल से भी अमीर गरीब, हर रंग जात मजहब के लोग लिखते हैं, तो हम उनको शामिल करते हैं जी। और कोई नई चिट्ठी?
बिल्कुल, ये चिट्ठी है अशोक कुमार ठाकुर की, ग्राम मालीटोल, जिला दरभंगा, बिहार से। बहुत सारी चिट्ठियां इन्होंने भेज दी हैं, 3-4 तो मैं बस
देखिए, ये तो बहुत खुशी की बात है कि 3-4 चिट्ठियां भेजी हैं।
एक तो इन्होंने कहा है कि जो इरोम शर्मिला पर का जानकारी दी गई वो इन्हें काफी अच्छी लगी, और दूसरा इन्होंने कहा है कि अब समय आ गया है कि युवा श्रोताओं के लिए करियर संबंधित कोई कार्यक्रम बनाए। वर्तमान समय में युवाओं से संबंधित कोई भी कार्यक्रम नहीं है
जी। जैसा हमारे कुछ साल पहले कार्यक्रम था, करियर क्या करूं, वो प्रस्तुत करते थे हम लोग हर हफ्ते। आपका सुझाव हमने नोट कर लिया है, और जब भी नए कार्यक्रमों की बात होगी तो इस पर जरूर गौर किया जाएगा।
अगला पत्र है वो भेजा है राम तीर्थ जी ने, समस्तीपुर बिहार से ही। इनको जो अब्दुल सत्तार ईदी हैं पाकिस्तान की, जो एक हस्ती जिनका निधन हुआ हाल ही में,
जी हाँ, जी
उस
हाँ।
पे जो कार्यक्रम था वो बहुत ही पसंद आया, और इनकी एक शिकायत भी है। दरअसल इल्जाम है इनका कहना है कि मैंने नोट किया है कि भारत विरोधी, हिंदू विरोधी सामग्री को आप ज्यादा महत्व देते हैं।
रामतीर्थ जी, जहाँ तक आपने ये बात की कि हमने ईदी साहब, जो पाकिस्तान के एम्बुलेंस वगैरह का उन्होंने बहुत अच्छा नेटवर्क खड़ा किया था, बदहालों की मदद करते थे, उन पर हमने कार्यक्रम किया, ये कार्यक्रम हम अपने दूसरे कार्यक्रमों में इसको पुनर्प्रसारित नहीं कर पाए, ये थोड़ा सा कमज़ोरी रह गई। लेकिन जहाँ तक आपने बात की कि हिंदू विरोधी कार्यक्रम हम करते हैं, मुझे लगता है कि आप हमारे कार्यक्रम लगातार सुने और ये मैं दूसरे श्रोताओं से भी कहता रहता हूँ, अगर आप हमारे कार्यक्रम लगातार सुनेंगे तो उसमें एक पक्ष नहीं होता है। अगर कश्मीर में मिलिटेंट्स की बात आती है तो जो सुरक्षा बल है उनकी भी बात आती है, आम जनता की भी बात आती है, हिंदुओं की बात आती है तो मुसलमानों की भी बात आती है। लेकिन सच को सामने रखना बहुत ज़रूरी है। अगर सच आपको माफिक नहीं आ रहा है या मुझको माफिक नहीं आ रहा है, उसको हम दबा नहीं सकते हैं कि सच सिर्फ एक ही रंग का होना चाहिए या एक ही ढर्रे का होना चाहिए, ऐसा नहीं होता है।
और अब ईमेल भी शामिल कर लें।
जी जी बिल्कुल ज़रूर, वो तो ज़रूरी है।
इंडिया बोल को लेकर कई सारे ईमेल आए हैं। जो रजनीश तिवारी हैं विशाखापट्टनम से, उन्हें एतराज़ है कि इंडिया बोल में किसी राष्ट्रवादी पत्रकार को क्यों बुलाया नहीं गया। सवाल उठता है कि आप कितने तटस्थ हैं।
दरअसल हम तटस्थ पत्रकारों को बुलाना पसंद करते हैं जो न तो राष्ट्रवादी हों, न ही अंध राष्ट्रवादी हों, न ही गैर राष्ट्रवादी हों, जो जिनकी पत्रकारिता में बहुत वर्षों का अनुभव है। उर्मिलेश ऐसे पत्रकार हैं जिनकी निष्पक्षता पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपकी अगर ये बात पर गौर किया जाए कि आपको अगर ऐसा लगा है, लेकिन अगर आपको ऐसा लगा है कि उसमें एक ही पक्ष ज़्यादा सामने आया, तो अगली बार से हमारी कोशिश होगी कि आपको भी कार्यक्रम में शामिल करें, तो हो सकता है दोनों पक्ष सामने आएंगे। तो अब हमारे पास समय कम है, इसलिए चलते चलते अपने श्रोताओं को पता बता देते हैं। बीबीसी हिंदी सेवा, पोस्ट बॉक्स 3035, नई दिल्ली 110003। और ईमेल लिखना चाहें तो पता है hindi.letters@bbc.co.uk।
नमस्कार।
डोपिंग के आरोप में फंसे भारतीय पहलवान नरसिंह यादव को नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी यानी नाडा से क्लीन चिट मिल गई है। इसके साथ ही अब वो इसी हफ्ते शुरू हो रहे रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने जा सकेंगे। क्या था पूरा मामला, बता रहे हैं आदेश कुमार गुप्त।
आखिरकार आज नाडा के फैसले के बाद डोपिंग में फंसे 74 किलो भार वर्ग में रियो ओलंपिक के लिए पिछले साल पहले ही जगह बना चुके पहलवान पंचम यादव का एक तरह से नरसिंह अवतार हुआ। दरअसल पिछले दिनों नरसिंह यादव के 2 डोप टेस्ट पॉजिटिव पाए गए, लेकिन बीते शनिवार को नाडा के वरिष्ठ अधिकारियों, नरसिंह यादव और नरसिंह यादव के वकीलों के बीच लगभग 8-9 घंटे तक वार्तालाप हुआ, तर्क वितर्क रखे गए और आखिरकार आज 5:30 बजे नरसिंह यादव को बेकसूर पाया गया। इस फैसले के बाद नरसिंह यादव का खुशी में डूब जाना स्वाभाविक था।
मैं भारतीय पुस्तक के प्रेसिडेंट गुरु कृष्ण सरन सिंह जी, जो इन्हीं को जैसे मैं यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस भी कंटिन्यू रख रहा था, सभी ने सच्चाई का साथ दिया और मुझे न्याय दिलाया और आपको ओलंपिक मेडल लेके आऊं, इससे बड़ी और कुछ नहीं।
अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या नरसिंह यादव रियो जाएंगे या फिर उनकी जगह भारतीय कुश्ती संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती संघ को पिछले सप्ताह प्रस्तावित किए गए प्रवीण राणा। पूरे मामले पर जानकारी देते हुए भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा,
मैंने जो 25 तारीख को रिप्लेसमेंट किया था उसमें इस बात का जिक्र मैंने किया था कि हमारी हाई लेवल की इंक्वायरी चल रही है और अगर नरसिंह दोष मुक्त हो जाएंगे तो हम प्रवीण राणा की जगह पर नरसिंह को लड़ाएंगे। अब ये दोष मुक्त हो गए, अब जजमेंट की कॉपी लेकर के UWW को और जो ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है उसको हम तुरंत लिखने जा रहे हैं।
उल्लेखनीय है कि नरसिंह यादव का 25 जून और 5 जुलाई को डोप टेस्ट हुआ। पहले टेस्ट में एनाबॉलिक स्टेराइड की मात्रा अधिक पाई गई, लेकिन 5 जुलाई को मात्रा कम पाई गई, जिसके बाद 2015 के एंटी डोपिंग नियम 10.4 के सेक्शन के तहत संधि का लाभ देते हुए उन्हें छोड़ा गया कि उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। नरसिंह का मामला जैसे भी सुलझा, उसे देखकर यही कहा जा सकता है कि अंत भला तो सब भला। बस अब देखना इतना है कि नाडा के बाद वाडा क्या फैसला करता है।
आदेश कुमार गुप्त रिपोर्ट सुना रहे थे। सभा की समाप्ति से पहले मुख्य समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। रूस ने कहा है कि उसके सैन्य हेलीकॉप्टर में से एक को सीरिया में मार गिराया गया। उसके रक्षा मंत्रालय ने बताया कि हेलीकॉप्टर में 2 अधिकारी, क्रू के 3 सदस्य समेत 5 लोग सवार थे। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के बाहरी हिस्से में स्थित नॉर्थ गेट कंपाउंड के गेट पर सोमवार तड़के एक जबरदस्त धमाका हुआ। इस परिसर में विदेशी कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, जिसमें एक पुलिस अधिकारी की मौत हो गई और 3 अन्य घायल हो गए। ब्राजील ओलंपिक खेलों के शुरू होने से महज 4 दिन पहले एसोसिएट प्रेस न्यूज एजेंसी ने अपनी रिसर्च में रियो डी जेनेरो के जलमार्ग से जुड़े जो तथ्य सामने रखे हैं, उसके अनुसार यहां के जलमार्ग मानव मल, बैक्टीरिया और खतरनाक वायरस से दूषित हैं। अमेरिकन ऑनलाइन टैक्सी सेवा उबर ने चीन की स्थानीय प्रतिद्वंदी दीदी चूशिंग के साथ विलय कर लिया है। बताया जा रहा है कि उबर ने बिना किसी मुनाफे के $2 अरब खर्च किए हैं, लेकिन चीन के बाजार में मजबूती नहीं बना पाए। बीबीसी समाचार।
इसी के साथ दिनभर की यह सभा भी यहीं समाप्त होती है। आपसे हमारी अगली मुलाकात अब से थोड़ी देर बाद घटना चक्र में होगी। अमरेश द्विवेदी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।